તારીખ 20/9/1997 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા આગ્રામાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 34.
એક બેને મળી છે, કુછ વાતે કરની હૈ, પૂછની હૈ, એક ઘંટા પર કિસી કે લીએ રખ લે, જિસકો જો ભી પૂછના હો. એની સ્વાધ્યાયની હૈ,
ભાઈ બહેનો કોઈ પ્રશ્ન હો ક્યાં લિખ કે દે દે, યા વૈસે ખડે હો ગયા વૈસે અપના પ્રશ્ન.
હા,
જિસસે કે સ્ટોપ કર, અંદર કો કોઈ કિસી પ્રકાર કા પ્રશ્ન હો.
હરીશ ભાઈ કે લીએ કોઈ પ્રશ્ન હો તો બોલ દીજિએ.
जब भेद विज्ञान से जब ज्ञान अपने त्रिगाली को अवलंबन लेकर के वेदन करता है, फिर कुछ दिन बाद उसके बाद शांत दशा हो जाती है, फिर जो अंदर से त्रिगाली में से उधर से जो वेदन निकलता है, दूसरी उसकी स्थिति हो जाती है.
हाँ,
जैसे कि अभिप्राय वैसे आनंद होता है ना, उधर से
ऐसा है कि जिसने अपने त्रिकालिक स्वरूप को देखा तो उसको उसका अनुभव महिमा आएगी, महिमा आएगी तो वजन जोर उसी पर जाएगा, और जब निर्विकलता होगी तभी शांति और आनंद का अनुभव होगा. तो उसमें अटकना का नहीं, अटकने का सवाल नहीं रहता, वो तो समय का अवस्था है, साधक को धर्मात्मा का ऐसा होता रहता है, वो विज्ञान चलता है और अनुभव आता रहता है. वेदियां चलता है, विकल्प करना नहीं पड़ता. उसमें तो कोई अटकने का प्रश्न नहीं है.
सुबह आपने कहा था भाई पूर्णता का लक्ष्य लेकर के, शायद कल शाम बात हुई कि लक्ष्य, सुबह लक्ष्य तो लेना पूर्णता का, लेकिन जो विकल्प में अपन सोचते हैं तो विकल्प में ऐसा आना कि शुद्धि मेरे को पर्याय में उत्पन्न करनी है, ये बात थोड़ा इसको स्पष्ट करें, ये बात क्लियर नहीं हो पाई किसी समय का होता है, इसलिए हमने उसका प्रश्न नहीं किया.
ऐसा है
जी,
संसार में जीव दुखी तो है
जी,
जिसको संसार में सुख लगा इसकी तो बात नहीं है, जिसको दुख लगता है उसको दुख से छूटना है, छूटने का उसका उसको भाव आता है. अब क्या है कि सुख निर्दोषता के साथ रहता है और दुख दोष के साथ रहता है
जी.
इसलिए अगर मुझे पूर्ण शुद्ध होना है तो मुझे पूर्ण निर्दोष भी होना है
जी.
मुझे दोष का एक अंश भी नहीं चाहिए. ऐसा जो निर्धार है कि किसी भी कीमत पे मुझे ऐसा ही करना है, उसको कहते हैं पूर्णता का लक्ष्य, उसको कहते हैं मोक्ष अभिलाष, और पूर्णता का लक्ष्य उसको बोलते हैं. जिसको ऐसा लक्ष्य होता है उनको एक सूझ वो आती है कि अनादि से अनजाना ये मार्ग प्राप्त करने के लिए कुछ जानकार मुझे चाहिए, इसलिए उनको ज्ञान की खोज रहती है. और जहाँ दोष होता है वहाँ उसकी दरकार होती है कि क्यों हुआ, किस अभिप्राय से हुआ, कितना हुआ, तो उसको वो भी जांच तलाश में अवलोकन में जाता है।
ऐसा विकल्प होना कि ऐसा मेरे को होना है, पूर्ण शुद्ध होना है, तो इसमें तो भेद पड़ गया, अपने को अशुद्ध मान रहा है वो वर्तमान में।
तो अवस्था में तो अशुद्ध है ही
जी,
पर अशुद्ध अवस्था में अपना एकत्व भी है
जी।
जो अपना स्वरूप है उससे तो अनजान है
जी।
अब वो उस हालत को नहीं चाहता है, ऐसी जो दुख रूप हालत है उसको नहीं चाहता है, और कोई भी नहीं चाहेगा दुख को, तो कोई नहीं चाहेगा। ये एक सही रूप से दुख का कारण दोष को समझ करके दोष अवस्था में से नाश करने का उसको अभिप्राय रहता है, और अब संपूर्ण सुखी होने का, निर्दोष होने का अवस्था में भाव रहता है। ऐसी स्थिति सहज रूप से किसके अवलंबन से होवे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह उसके लिए है, क्योंकि स्वरूप में देखा है, सुना जरूर कि स्वरूप के अवलंबन से शुद्धि की शुरुआत होती है और स्वरूप के अवलंबन से पूर्ण शुद्धि होती है। लेकिन ये स्वरूप कैसा है वो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए इसकी खोज अंतर खोज भी होती है, और बाहर में जिसको इस विषय का अनुभव है उसका संग करने का भाव रहता है, जिससे तो यथार्थ रूप से इस कार्य में लग सके और कोई भूल चुक होकर के अपना समय शक्ति का बिगाड़ नहीं होवे। उतनी दरकार उतनी सावधानी आती है और भीतर में खोज चालू रहती है। उस खोज में भी जो भी उनको सूचना मिलती है अनुभवी जाने से, उसी के अनुसार वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, अपने आप अपनी मनमानी से वो काम नहीं करता, तभी वो यथार्थ रूप से आगे बढ़ता रहता है, मार्गदर्शन उसको मिलता रहता है और खुद कार्य को करता है मार्गदर्शन के अनुसार। क्योंकि चूक होने का, भूल होने का बहुत स्थान है, मार्ग पर चढ़ने की तो एक ही जगह है लेकिन भूल होने का बहुत अवकाश है, इसलिए क्योंकि जीव पर्याय दृष्टि है और पर्याय में कुछ भी फेरफार करेगा तो उसमें अहम हो जाता है। एक पूर्णता का लक्ष्य वाली योजना ऐसी योजना है कि जिस योजना के कारण से किसी भी अवस्था का सुधार हुआ, किसी भी प्रकार का हुआ, तो गिनेगा नहीं, उसको गौण कर देगा। तो मेरे को तो पूर्ण होना है, इसमें पूर्णता कहाँ आई, मेरे को तो पूर्ण होना है, इसमें पूर्णता कहाँ आई। वरना पर्याय बुद्धि वाले को दृढ़ दृष्टि के अभाव में पर्याय का अहम छूटना बहुत मुश्किल है। ज्ञानियों ने इसीलिए इस योजना को रखी कि दृढ़ दृष्टि होना तो दूर की बात है, ये कोई अभी तो ऐसे होने वाली चीज नहीं है, तो अब कुछ भी सुधार तो होगा, मुमुक्षुता की प्राप्ति होगी, मुमुक्षुता में वो और आगे बढ़ेगा, कई प्रकार के धर्म साधन को भी करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, कुछ भी करेगा, सूक्ष्म बढ़ेगा, सब कुछ होगा, कषाय की मंदता होगी, कषाय रसमंद होगा, जो भी कुछ होगा उसका अहम नहीं आने का साधन क्या है। बिना दृढ़दृष्टि, दृढ़दृष्टि वाले को तो अहम नहीं आता है क्योंकि पर्याय बुद्धि है ही नहीं, खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ तो पर्याय बुद्धि गई नहीं, इसलिए यहाँ से शुरुआत कराई है कि तुम्हारा लक्ष्य अगर पूर्णता पे है तो किसी भी पर्याय को मुख्य करने का अवकाश नहीं रहेगा। ये बहुत योजनाबद्ध कार्य पद्धति है जिससे तो सही सलामत रूप से आगे बढ़ सकता है।
तो लक्ष्य पूर्णता का तो भाई जी तभी करेगा जब पूर्णता का यह श्रद्धान कर लेगा कि यही पूर्णता है।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। किस तरह से होता है कि अशुद्धि है और दो स्वरूप है, पर खुद को बिल्कुल अशुद्धि नहीं चाहिए, इसी का नाम पूर्णता का लक्ष्य है। तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, पूर्ण सिद्धि कैसी है वो पॉजिटिव बात अभी दिमाग में,
हाँ
वो नहीं है, तो स्वरूप समझ में नहीं आया है, तो स्वरूप को अनुभव के कारण ही समझ में आता है। मोक्ष तत्व का श्रद्धांत स्वरूप के श्रद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, तो अभी श्रद्धांत का सवाल नहीं रहा। अब तो उनको दुख और दोष नहीं चाहिए और बिल्कुल नहीं चाहिए, उतनी सी बात है, उसी को कहते हैं पूर्ण। मुझे पूर्ण सुख चाहिए, पूर्ण शुद्धि चाहिए। नास्तिक में खड़ा है तो नास्तिक से ही चालू होता है, ऐसी परिस्थिति वहाँ है, तो कोई कल्पना में नहीं आना है कि मोक्ष ऐसा है, आत्मा ऐसा है, ऐसी कोई कल्पना नहीं करनी है। प्रैक्टिकली जितना हो सके उतना करना है, वो तो बात है।
छोटी पीपल का दृष्टांत बहुत देते थे, उसमें कहते थे कि उसमें भरी हुई है, वो बाहर से नहीं आई है,
ठीक है,
ऐसे ही आत्मा में संपूर्ण शक्ति भरी हुई है, वो बाहर से नहीं आती है,
ठीक है,
वो अंदर में, ऐसा अंदर में विश्वास करना तो वो पर्याय की प्रकटता होने की एक निशानी है, और पर्याय से प्रकट होती है, विश्वास आना चाहिए अंदर में चीज है,
और विश्वास है ये जो जीव है ना वो पक्का बनिया है, हमारी आत्मा है ना तो पक्का बनिया है, उधर ही में विश्वास नहीं करता, किसमें उधर ही में विश्वास नहीं करता, आपको मोक्ष मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, उसमें विश्वास नहीं आएगा। उनको व्यापारी को नोट दिखाओ, पहले तो कोई ग्राहक आता है, बोलेगा कि हमको तो माल चाहिए, बहुत माल चाहिए, हम छोटा व्यापार नहीं करते हैं, बहुत बड़ी खरीदी करने वाले हैं, तो लगा कर ग्राहक तो बड़ा है, लेकिन उधार मांगेगा तो क्या भाव कहना, रोकड़े का क्या भाव कहना। तो वो बोलता है कि देखो हिसाब तो बाद में करेंगे, मैं कुछ नोट लाया हूँ वो आप रख दो, फिर मेरा माल का जो हिसाब होगा बाद में लेन देन जो भी बता करके हो गए कर देंगे। तो समझ गया कि पैसा तो कैश लाया है, उसको विश्वास आता है, पक्का कराते हैं, भाव पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, बातें बनाने वाला नहीं है, माल लेने वाला है। हमारा जीव भी ऐसा है, जीव का स्वभाव भी ऐसा ही है, तो जीव स्वभाव की बात है। व्यापारी से बहुत सी बातें मिलती जुलती आती है, तो उनको स्वभाव अंश दिखता है पहचान के काल में, तब विश्वास आता है। इसके पहले वो कितना भी सुनता है उसको असर नहीं पहुंचते। जैसे हम मुमुक्ष हजारों मुमुक्ष ऐसे हैं कि गुरुदेव जैसे गुरुदेव ने महापुरुष ने तीर्थंकर के साक्षी से लेकर के बोला है कि सिमंदर भगवान वर्तमान में सर्वों शरण में ये बात कह रहे हैं जो बात मैं कहता हूँ कि तेरे आत्मा में अनंत सुख है, लेकिन हमको बाह्य पदार्थ में सुख का विश्वास जो प्रैक्टिकली जमा है वो निकलता नहीं है
जी।
तो वो प्रैक्टिकल वहाँ सुख का अनुभव करते हैं, वो बात है, आत्मा में अनंत सुख भरा है वो बात है सुनी हुई, पर इधर मिठापन लगता है, अच्छा लगता है, ये अनुभव का सुख है, भले कल्पना है ज्ञानी की दृष्टि में, लेकिन खुद की दृष्टि में तो सुख का ही अनुभव है, तो उसका निश्चय वह सुख का हो गया है अनुभव कर करके। कि अनुभव करके जो सुख का झूठा निश्चय हुआ है तो अनुभवांश से ही बदल सकता है, बातों से नहीं बदलता है।
अनुभवांश के लिए फिर क्या मुश्किल है, तो विश्वास करना के अंदर में चीज है।
हाँ हाँ, इसका इसका नमूना बार है, इसका सिंपल बार है, तो ज्ञान सामान्य में है, ज्ञान सामान्य अकसाय भाव रूप त्रिकाल है, प्रगट रूप से प्रगट है, अनुभव गोचर है और साकार रूप में है, कसाय का अभाव स्वभावी है इसलिए सुख रूप है। स्वरूप निश्चय के काल में, स्वरूप की पहचान के काल में कोई कितना भी कम सूक्ष्म वाला संगी जीव है उनको दो बात समझ में आ जाती है कि मेरे में अनंत ज्ञान है जो कभी राग रूप होता नहीं, हुआ भी नहीं, शुद्ध ही रहा है, इसलिए मेरी शुद्धत्व शक्ति अनंत है। एक पर वो ज्ञान में राग आदि कथाएं दुख नहीं होने से मेरा स्वरूप भी अनंत सुख रूप है, उसका नमूना अनुभवांश रूप से चखने को मिलता है, तभी विश्वास आता है। इसके पहले से ही विश्वास किसी को आता है और आता है ऐसा मानता है वो धोखा में है। क्योंकि इसको खुद को अनुभव है उल्टा, बात में मानने वाला ये जीव है ही नहीं, इसको तो कैसे दिखाओ, हिसाब बाद में करेंगे। तो ये स्वरूप निश्चय के कारण में अनुभवांश से प्रतीति आती है, विश्वास आता है। पर यही विश्वास जगत के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है, पर सुख था वो धोखा था, गलत था, इस विश्वास को तब उड़ाता है। स्वरूप में सुख है ऐसा विश्वास, बाह्य किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है, सुख था वो तो मेरा निश्चय गलत था, इस बात को उड़ा देता है। तो अनुभव की लड़ाई अनुभव से होती है, बातों से नहीं होती है। तलवार वाले से लकड़ी से लड़ाई नहीं किया जाता, और पिस्तौल वाले के सामने भी तलवार से लड़ाई नहीं की जाती। लकड़ी के सामने लकड़ी चाहिए, तलवार के सामने तलवार चाहिए, पिस्तौल के सामने पिस्तौल चाहिए। जब हमारा उल्टा अनुभव सुख का चल रहा है तो उसके सामने उसको बदलने के लिए उल्टा अनुभव चाहिए, बातें से नहीं काम होगा। पर बातें से जीव को असर पहुंचने वाली है भी नहीं। अब देखिए हजारों मुमुक्षुओं ने ये बात सुनी है कि आत्मा में अनंत सुख का समुद्र भरा है, जिसका कोई तलवार नहीं है, बॉटम लेस ये समुद्र है। संसार के समुद्र में तो स्वयं गुरुमण समुद्र को भी तलवार है, लेकिन आत्मा में जो सुख समुद्र है उसका कोई अंत नहीं है। और ये सुख आकुलता है, साथ ही ज्ञानी क्या बताते हैं कि तुम्हारा जो सुख है तुझे अनुभव में लगता है वो तो आकुलता है, दुख है, पाप भाव है, पाप में तीव्र कषाय, तीव्र कषाय में तेरी सुख की कल्पना है, बिल्कुल धोखाबाजी में तुम पड़ा है। फिर भी आत्मा को असर क्यों नहीं होती है? इसलिए असर नहीं होती है कि जो बात सुनी है उसका प्रैक्टिकल साइड में अनुभवांश आना चाहिए, वहां तक पहुंचा नहीं।
तो जो अनुभव चल रहा है, जो गलत अनुभव चल रहा है और सही अनुभव के लाने के लिए कौन सी डोज है, मतलब कौन सी दवाई है जो मतलब अनुभव की लड़ाई अनुभव से ही?
हाँ, तो उसकी दवाई क्या है कि खुद को अपने अनुभव को देखना पड़ता है कि मुझे क्या अनुभव हो रहा है।
ठीक
है, तो अनुभव उसका मोह मिलान करता है, जो बात समझी है उसको अनुभव के साथ जोड़ता है, जो बात समझ में आई है उसको अनुभव के साथ जोड़ता
है। अनुभव तो
पहले पहले तो क्या विश्वास कैसे कैसे आता है मैं बताऊँ आपको। तो ज्ञानी ने ये कहा कि राग मात्र दुख है, खुद का अनुभव में ही आता है कि कुछ राग में तो सुख लगता है, कुछ राग में तो दुख लगता है, उसका अनुभव तो एक सा रहता नहीं, जो बात सुनी है तो फिर वो जांच तलाश में जाता है। और जांच तलाश में जाता है और अनुभव से वो बात को समझने का प्रयास करता है। अगर नास्ति वाली बात सही लगती है तो फिर अस्ति वाली बात की जांच तलाश में जाता है कि देख तेरे ज्ञान को, ज्ञान से ज्ञान को देख। तो दुख को देखने में भी ज्ञान साधन है और ज्ञान को देखने में भी ज्ञान ही साधन है। ज्ञानम एकम साधनम साधनादि विधौषिका पंचाध्यायी उत्तरार्ध के 401 नंबर की गाथा है कि ज्ञानम एकम साधनम साधनादि विधौषिका स्वानुभूति एक हेतुश्च तस्मात् तत् परमं पदम्। इस स्वानुभूति का एक ही कारण है ज्ञान। मुमुक्षु की भूमिका में ज्ञान ही एक साधन है, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। ज्ञान से ही वो दुख और दोष को पहचानता है, ज्ञान से ही ज्ञान को सुख को पहचानता है। और वो बात रही जांच तलाश की, और वो जांच तलाश भी ज्ञानी की सूचना के अनुसार चलने वाली होनी चाहिए, तभी वो भीतर में अपना कार्य करने को, भीतर में अपना कार्य होने का संभव बनता है और सही सलामत रूप से आगे बढ़ने का होता है। वरना संसारी जीव को पूर्व कर्म का अनेक प्रकार का ऐसे ऐसे उदय आता है और खुद की कमजोरी और अज्ञान का अभी गई नहीं, कहाँ कैसा पछाड़ खाएगा इसका कोई पता नहीं चलेगा। एक सेकंड में उदय आया, परिणाम बिगड़ जाएंगे। तो ये तो इस पुरुषार्थ में जो लगते हैं उनको ही मालूम पड़ता है कि इसमें कितना खून पसीना आता है। बेंस भी बहुत अच्छी बात करती है इस विषय में कि जो भी ग्रंथ निकला है उनकी चर्चा का स्वानुभूति दर्शन, उसमें बहुत सी बातें ली हैं उन्होंने कि जिसको अपने आत्मकल्याण की भावना हुई कि मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे अब संसार में भटकना नहीं, परिक्रमण करना नहीं, जन्म मरण मुझे नहीं चाहिए, वो भावना सही कब है, क्या ऊपर ऊपर की इच्छा है, यहां से उन्होंने बात को बहुत अच्छी तरह लिया है कि ये सही भावना अंतर की भावना आत्मा में से निकली हुई भावना तब है कि उसको इस चीज की लगन लगे कि मुझे यही करना है जीवन में, मेरे पास जो भी समय है शेष आयु है उसमें मेरे एक ही काम करना है, पर इसके लिए मुझे सत्संग चाहिए। खुद का अनुभव से वो बात उन्होंने कही। 15 साल की उम्र में जब इसकी भावना हुई तो उन्होंने घर का त्याग कर दिया। वो कराची में रहते थे, तो मुसलमानों की बस्ती ज्यादा है कराची में, तो देखा कि यहाँ तो कोई साधु संत आते नहीं, सत्संग का कोई अवकाश नहीं है। जब सत्संग ही नहीं मिलता है तो आत्मकल्याण होने का तो कोई प्रसंग ही नहीं बनेगा, मेरी भावना तो साकार हो सकती नहीं। प्रकृति के इतने नरम थे, बहुत नरम प्रकृति, कड़क प्रकृति तो नहीं थे शुरू से, फिर भी उन्होंने निर्धार करने में वो बहुत मक्कम थे। एक साथ दो गुण इस प्रकार के थे कि प्रकृति के नरम होने के बावजूद भी जिस बात का वो निर्धार कर लेते थे तो मुझे ये करना है, उसको छोड़ देते थे। तो उस घर में 15 साल की उम्र की लड़की घर का त्याग करके निकल जाती है तो समाज में तो हो हल्ला हो जाता है, क्या हो गया, कैसे घर से भागी, हो क्यों भागी, क्या बना घर में, क्या प्रसंग हो गया। वो तो आत्मकल्याण के लिए नहीं, अपने पिताजी के घर आ गई थी। उन्होंने बोल दिया कि मुझे वहां रहना नहीं है, मुझे आत्मकल्याण के सिवा कुछ करना नहीं है। संप्रदाय में पहले दीक्षा लेने की इच्छा किया था, अब वो दीक्षा की इच्छा संप्रदाय में इच्छा तो दीक्षा भिक्षा लेने में से कुछ होने वाला नहीं है, सत्संग चाहिए। इस सत्संग की तीव्र भावना के अनुसार उन्होंने एक बहुत भारी कदम उठाया। वो कदम उठाने के पीछे उसकी लगन थी कि बस मुझे ये काम करना है। पूरी लगन से जब उसके पीछे लगे तो उसको ज्ञानी पुरुष भी मिल गए और अपना काम भी 3 साल के भीतर भीतर हो गया। तो उन्होंने ये बात लिखी है कि अगर हमने ये आत्मकल्याण की बात सुनी है तो ये एक ही बात के पीछे हमारी लगन है क्या, तब तो हमारी भावना सही है। क्यों कि इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, जो बात हम समझते हैं उस बात का हमें अमलीकरण करना है। ये शब्द लिया है अनुभव प्रकाश में ये दीपचंद प्रकाश निवारी अमलीकरण, जो बात हमारे समझ में आई उसका अमलीकरण करना है। बस लगन वाले को अमलीकरण होता है, जैसे अपने कल चर्चा चली कि अवलोकन होना पूर्णता का अगर लक्ष्य हुआ, कहें पूर्ण शुद्ध होना है, तो इसके पीछे अवलोकन का स्टेज क्यों आया, दूसरी कोई बात क्यों नहीं आई? कि अवलोकन अपने परिणाम का लगन वाले को ही होता है, लक्ष्य वाले को ही होता है, दूसरे को करना चाहे तो नहीं होता है। विज्ञान की बात तो बहुत दूर रही। हम कभी राजपुर पार्क वगैरह सेंटर में प्रवचन करने को गए, जिसमें हमारे अभ्यासी लोग सुनने वाले थे, अच्छे अच्छे विद्वान लोग। हम एक प्रश्न करते थे, ठीक है, जब हमको बताया गया है, गुरु से बताया गया है कि तुम्हारा ज्ञान में ज्ञान स्वभाव प्रकट है, तो दिखता क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखता है? ज्ञान में ज्ञान स्वभाव प्रकट है, वही परमात्मा तत्व है, वही आत्मा है, जिसको हमें देखना है, जिसका हमें दर्शन करना है, जिसका अवलंबन लेना है, आधार लेना है, क्यों नहीं दिखता है? इस प्रश्न का हमें गहराई से विचार करना है। मात्र गाथा पढ़ लें और उसका अर्थ घटन कर लें, हो गया स्वाध्याय, वो बात ठीक नहीं है। दूसरी बात कि जब हमको ये कहने स्वभाव इस तरह से दिखाने में आता है, दूसरी बात वो है कि हम लोग बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, सब कुछ समझते हैं, फिर भी हमारा कार्य क्यों नहीं होता है, इस विषय में हमारी जांच तलाश किस प्रकार की है? ये दो मुद्दे की बात है, क्यों ऐसा हो रहा है? बात हम समझते हैं कि भेद ज्ञान से स्वानुभूति प्रकट होती है, निर्विकल्प दशा होती है। भेद ज्ञान कैसे किया जाता है, दृढ़ कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्म से, इसके लिए सारा समय का हम अनेक बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और श्री गुरु जैसे समर्थ पुरुष से सुन चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि भेद ज्ञान दिन में सहज रूप से चलता है कि नहीं चलता है, और चलता है तो कितना समय तक चलता है? जिसको भी चलता है वो बता दें। एक विद्वान, एक आदमी नहीं निकलता है कि मुझे भेद ज्ञान चलता है। शास्त्र पढ़ने वाले निकले, हम 4 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, सुबह से लेकर के पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, वो करते हैं। मेरा सवाल भेद ज्ञान से है कि अगर स्वानुभूति का कारण भेद ज्ञान है, तो भेद ज्ञान किसका चलता है, कितना चलता है? जो निरंतर चलता चलना चाहिए वो 5 मिनट चलता है, 1 घंटा चलता है, 2 घंटा चलता है, कितना चलता है? किसका चलता नहीं है। चलना चाहिए वो सबकी समझ है कि हमें भेद ज्ञान चलना चाहिए, तभी अनुभव होगा। दूसरा तो कोई इलाज माने तो ये तो बहुत बड़ी भूल है, लेकिन समझदार पढ़ने वाले तो नहीं मानेंगे। अब क्यों नहीं चलता है? इच्छा तो है हमारी, क्यों के सहज रूप से उस भूमिका में पहुंचे, ऐसी जो कोई योजना है, उस योजना को हमने कार्यान्वित की नहीं, तो काम कहां से होगा? इसलिए समझना एक बात है, अमलीकरण होना दूसरी बात है। हम जा खड़े हैं, वहां से ज्ञानी जैसा कहे उसका अमलीकरण हमारा करना चाहिए, तभी हमारी समझ सार्थक होगी, वरना समझ समझ में रह जाएगी, अनुभव कुछ और ही होता रहेगा। बहुत सीधी सादी बात है कि जब राग में ही अपनत्व नहीं करना है, हाँ, स्वरूप में अपनत्व करना है ना, और राग में भी अपनत्व नहीं करना है, लेकिन हम परिवार में अपनत्व करते हैं कि नहीं करते हैं? ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरा लड़का है, मेरा पोता है, घर में जाते ही मेरा घर है, बिना विकल्प मेरापन लगता है, इसका क्या विचार नहीं करना पड़ता कि ये मेरा है। बात रही लगने की, लगना वो अनुभव है, विचार अलग चीज है, अनुभव अलग चीज है। हम उल्टा अनुभव चालू रखते हैं और उल्टा विचार करते रहते हैं। हमारी लड़ाई अनुभव के अनुभव के साथ होनी चाहिए, विचार के विचार के साथ होनी चाहिए। हाँ, जब तक हमारे विचार उल्टे थे कि देश है आत्मा का कार्य होता है, आत्मा बोल सकता है, आत्मा शरीर का कार्य कर सकता है, पूजा मैंने किया, संयम मैंने पाला, वहां तक तो हमारी भूल भी विचारी भूल की भूल थी, वो उल्टी थी, समझ उल्टी थी हमारी। गुरुदेव की कृपा से वो बात को समझ में आ गई। वहां कहां तक समझ में आ गई कि एक समय की शुद्ध केवल ज्ञान के पर्याय से रहित हमारा कर्म, तो जो समझ है उस रूप में अगर हमारा अनुभव नहीं है तो उल्टा अनुभव के साथ हमारी लड़ाई उल्टा अनुभव से होनी चाहिए, विचारों से नहीं। दो प्रकार के परिणाम है, एक विचार वाले और एक अनुभव वाले। तो हमारा उल्टा अनुभव तो अनादि से चालू है और वो प्रैक्टिस यूं की यूं चालू है। हमने देखा है कि तत्व की बहुत बात करने वाले परिवार में उतना महत्व देखा जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं, इतना चिकने परिणाम देखा जाता है। बात करते हैं कि आत्मा एक समय की पूर्ण शुद्ध पर्याय से भी भिन्न है, लेकिन जब रुपयों की बात आती है, परिवार की बात आती है, उतना अपनत्व देखा जाता है, बिना विकल्प देखा जाता है कि कितना लगता है। तो ये जो लगने वाली चीज है वहां हमारा ध्यान भी नहीं जाता, कोई गुस्सा करेगा ये तो क्रोधी हो गया, कोई रात्रि भोजन करेगा अरे जैन होता है रात्रि भोजन करता है, लेकिन ये अपनत्व करता है इसका क्या, दर्शन में तो इससे बढ़ता है, दर्शन में क्रोध करने से नहीं बढ़ता है, रात्रि भोजन करने से नहीं बढ़ता है, दर्शन में तो अपनत्व करने से बढ़ता है, पर वो तो हम गाढ़ करते हैं। जो भी हमारे परिवार है उस पर हमारा अधिकार जमाया हुआ है, जैसा मैं कहूं वैसा होना चाहिए। तो उस प्रकार के हमारे जो परिणाम है उस पर हमारा ध्यान जाता नहीं। तो परिभ्रमण का कारण तो वो है, संसार का कारण तो वो है, दुर्गति का अधोगति का कारण तो वो है। परिवार में स्नेह होना, प्रेम होना, अपनत्व होना वो दुर्गति का अधोगति का कारण है, इस पर ध्यान कितना गया और वजन कितना गया। उल्टा प्रैक्टिस हमारा चालू है और उल्टा विचार करते हैं, प्रैक्टिस उल्टा करते हैं, विचार उल्टा करते हैं, कभी हमारा मेल खाने वाला है। नाता नहीं तोड़ करके अपनत्व को तोड़ दो, नाता यूं कहीं रखो अपनत्व को तोड़ दो। आपका नौकर भी आपका काम करता है और आप भी अपना काम करते हो, दोनों घर के काम करते हैं, दुकान के काम करते हैं, हाँ नौकर को क्या लेना देना है, लेकिन आप धनी बन के बैठे हो, इस गद्दी पे उठ करके आपको नौकर बनना नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि तुम नौकर बन जाओ, धनीपना छोड़ दो, धनीपना हमको छोड़ना नहीं है, पर उतना स्थूलता है, उतनी स्थूलता है इस विषय में हमारी कि हमने द्रव्यगुण पर्याय की बात समझी कि पदार्थ का बंधारण है वो द्रव्यगुण पर्याय में या द्रव्य क्षेत्र काल भाव में समाप्त होता है, इसके बाद है ही नहीं। फिर हमारा अपनत्व ये परिवार में आया कहाँ से, मकान में आया कहाँ से, कपड़ों में आया कहाँ से, पैसों में आया कहाँ से,
हम अनंत बार मुनि हुए हैं, अनंत बार प्रत्येक चीज मुनि हुआ है,
वो रख के हुआ हुआ। मैंने मेरे परिवार को छोड़ा, किसको छोड़ा, मैंने मेरे परिवार को छोड़ा, मैंने मेरी संपत्ति का दान दिया, मेरा प्रदर्श करके बाह्य त्याग किया, अब अंदर में मेरा अपना रखा है वो छुटा है। इस छोड़ने की योजना है सारी, उसको ज्ञानी का मार्ग कहते हैं, उसको जिनेन्द्र का मार्ग कहते हैं। बाह्य त्याग वो जिनेन्द्र का मार्ग नहीं, वो तो अनेक बार हो चुका हमारा। शास्त्र ज्ञान वो कोई जिनेन्द्र का मार्ग नहीं, वो धारणा भी जिनेन्द्र का मार्ग नहीं। मार्ग है वो है कि पहले दर्शन को कमजोर करके अपनत्व को फिक्का कर दो, रस को गाल दो, दर्शन की ताकत को तोड़ दो, तभी उत्सम होगा। हम शक्ति और जगह खर्च करते हैं, जहाँ खर्च कर रहा है वो छूट जाती है, ध्यान नहीं जाता है, लक्ष्य नहीं जाता है। इसलिए पूछा, तो प्रयोजन सिद्धि पढ़ा के नहीं पढ़ा, इसलिए पूछा कि ध्यान गया कि नहीं गया। कि हमारे जो जैनेन्द्र शब्दकोश है, उन्होंने बहुत पढ़ाई पढ़ा है शास्त्रों को, बहुत साल तक परिश्रम लेकर के ये शब्दकोश तैयार किया है। 12 साल तो मौन रहे हैं वो नरेंद्र जी, और रात को 12-12 दो दो बजे तक काम किया है 12-12 साल तक। दर्शन के विषय कोई भी शब्द लेते हैं, उसमें कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हुआ है, किस गाथा में हुआ, किस शास्त्र में हुआ, किस पेज पर हुआ है, कितनी पंक्ति है, सब डिटेल दिया है। पर एक शब्द के पीछे पूरा पैराग्राफ देते हैं। दर्शन अनादि से जो नहीं गया, और जिसको जाने की उपशम करने की समस्या है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी समस्या वो है, तो दर्शन वाला तो अल्फाबेटिकल होता है ना, कथा जगह तो द वाला निकाला। दर्शन मोह के विषय में क्या लिखते हैं, 3-4 पंक्ति लिखा है, जिस पर पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं, कितना पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं उसके विषय में 3-3.5 पंक्ति आई है। तो जो विषय पर ध्यान जाना चाहिए वो ध्यान नहीं जाता है, तो हमारी शक्ति और हमारा वजन और जगह चला जाता है, बस निष्फलता का वही कारण है। ये जो योजना है मुमुक्षु का आरोहण क्रम, पुस्तक तो आपके पास आई क्या? नहीं आई। तो मुमुक्षुता आरोहण क्रम, अभी पुस्तक अभी नया प्रकाश है, गुजराती हुई है, हिंदी अनुवाद हो चुका है, अभी हमने बम्बई में उसका पूरा जांच कर लिया, अभी प्रेस में भेजा है, हिंदी तो अभी प्रेस में भेज दी है, अभी अनुवाद तो हो चुका है, उसका जांच तलाश भी हो गया, अब उसमें प्रेस में भेजिए कंपोजिंग के लिए, हिंदी में भी आ जाएगा। ये सारी योजना है इस विषय की। उसमें मुख्य बात वो है कि कौन सा मुमुक्ष सफल होकर के मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है, ऐसा मुमुक्ष कौन सा है कि जो सफलता को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग समय दर्शन को प्राप्त कर लेता है, कि जिसको अपने प्रयोजन की सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि होती है वो। अब हमारा ध्यान प्रयोजन पर नहीं जाता है, ये सबसे बड़ी आपत्ति है। वो प्रयोजन की दृष्टि किसको होती है, जिसको पूर्णता का लक्ष्य होता है उसको। पूर्णता का लक्ष्य होने में कितनी कितनी बात खड़ी होती है, कि सबसे कोई अमूल्य बात पैदा होती है तो वो होती है कि उसको तो किसी पर्याय में अहम नहीं होता, अटकने का उसका छूट गया, एक बात आगे बढ़ता जाएगा अटकेगा नहीं। दूसरा कि उसको अपना प्रयोजन की सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि आ जाएगी, पर उस दृष्टि के वशात उसका अवलोकन चलता है कि मेरे प्रयोजन की हानि कहाँ होती है, मेरा प्रयोजन का सुधार कहाँ है। ये दृष्टिकोण साध्य हुए बिना किसी मुमुक्षु का, मुमुक्षुता का विकास तो हो नहीं सकता, ज्ञान दशा की प्राप्ति तो बहुत दूर है।
ये क्रम से होता
है, क्रम से होता है, बिल्कुल योजनाबद्ध विषय है, सुव्यवस्थित विषय है। इसलिए तो इस पर हमारा 2 साल पहले मुंबई में ये 254 नंबर के पत्र पर ही प्रवचन हुए थे, 8 दिन तक। उसके कैसे अच्छे उतरे थे। तो जिस मुमुक्षु ने वहाँ आयोजन किया था वो खिमजी भाई खाते हैं अपने उपाध्याय में बम्बई में, उन्होंने वो प्रयोजन व्याख्यान माला में जो प्रवचन रखे थे अपने, उन्हें अपने कैसेट का सेट पर से पूरा लिख लिया, फिर हमको भेज दिया। मैंने देखा जैसे तो बहुत बढ़िया चला था उन दिनों में, मैंने देखा कि अच्छा है चलो इसका किताब छपा है। तो अभी वो प्रकाशन होकर के गुजरात में दोबारा आ गई है, साथ साथ इसका हिंदी करवा लिया और हिंदी का जाँच अभी हमने किया बम्बई में, और जो दिन बम्बई में ठहरे उन दिनों में वो काम हाथ में ले लिया था, अभी वहाँ से प्रेस में भेज दिया तो बाहर आ जाइए।
बिल्कुल
गुजरात में चला था इसलिए वो पुस्तक गुजरात में प्रसिद्ध हुई और फिर इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। तो प्रयोजन की जो दृष्टि है उस विषय में हम कभी अच्छे अच्छे पुराने मुमुक्ष को प्रश्न कर लेते हैं स्वाध्याय के द्वारा कि देखिए भाई साहब आपका इस लाइन में प्रवेश तो बहुत पुराना है, काफी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हो, बात तो ठीक है और हम बहुत पुराने मुमुक्षु हैं, बहुत साल से शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, ये हमारी क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है? ये हमारी डिसक्रेडिट है, ये हमारी इज्जत नहीं है कि इतने साल तक हम स्वाध्याय करते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त है, मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त हुआ, तो हमने किया क्या? तो रणमल जी कहते हैं कि सम्यक दर्शन का कारण तत्व ज्ञान का अभ्यास है, पूजा भक्ति व्रत उपवास त्याग दया दान यात्रा जप तप ये कोई सम्यक दर्शन का इलाज नहीं है। फिर भी तत्वज्ञान का अभ्यास करने वाले को सम्यक दर्शन होता भी है और सम्यक दर्शन नहीं भी होता है, और ये प्रत्यक्ष दिखने में आता है और हम लोग बनिए हैं कि हम माल दे, हम पैसा दे, समय खर्चे, पैसा का खर्च करे और माल नहीं मिले, मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा, हमको नहीं देना है। हमको तो जो दे उसके सामने माल चाहिए, हम मुफ्त में ऐसा रिस्क लेने वाले नहीं है, लेकिन बात तो ऐसी है करे क्या? तो उन्होंने वह बात खोली नहीं है, लेकिन यथार्थ रूप में बात वो है कि जो तत्व ज्ञान का अभ्यास यथार्थ पद्धति से करता है उसको अवश्य अवश्य समय दर्शन होता ही है, उसमें काल लब्धि वाली बात नहीं है। और जो मुमुक्षु यथार्थ रूप से तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है, सही होते हुए भी यथार्थ है, सुबह बात चली थी, उसको कभी समय दर्शन नहीं होता है। इसलिए बात कोई संदिग्ध अवस्था में शंकाशील परिस्थिति में नहीं है, क्यों कि हमको ऐसा खोटा खर्च नहीं करना है कि माल मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, पैसा दे दो, ऐसे तो पैसा हम देने वाले है नहीं, हमको तो माल चाहिए ही चाहिए, हम खर्च करते हैं।
पंचाध्याय में 16 या 17 नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसा आता है कि स्वानुभूति के काल में भाव मन ज्ञान रूप होकर के प्राणमित होता है, तो क्या इसका तात्पर्य ये है कि भाव मन को शुद्ध स्वानुभूति के काल में भाव मन को ही ज्ञान की संज्ञा दी जाती है?
संज्ञा दी जाती है, इसमें संज्ञा है।
या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भाव मन है वही ज्ञान है?
हाँ ठीक है, बोलने में कोई आपत्ति नहीं।
तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भाव मन है वही आत्मा है?
हाँ, वो भी कह सकते हैं इस ढंग से, इस ढंग से कह सकते हैं, कह सकते हैं, परंतु उतने बात क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए कि ये भावमन माने बहिर्मुख परिणाम नहीं,
द्रव्यमन का अवलंबन लेकर,
द्रव्यमन का अवलंबन उसको नहीं, बात उतनी साफ होनी चाहिए, फिर आप आपत्ति। अच्छा, तो बात जो चल रही थी वो प्रयोजन की दृष्टि से, हमने एक बहुत पुराने हमारे अभ्यासी मुमुक्षु बुजुर्ग थे, तो आप करीब 50-60 साल से गुरुदेव के परिचय में हैं, काफी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। कभी आपने शास्त्र स्वाध्याय करते हुए चालू अध्ययन में, चालू स्वाध्याय में ऐसा दृष्टिकोण रखा है कि मेरे प्रयोजन की बात कब आती है और कौन से आती है? ओके, नहीं तो ये स्वाध्याय परिवर्तन हो रहा है। जिसको स्वलक्ष्य से स्वाध्याय होता है, क्योंकि स्वाध्याय सत्संग में शास्त्र में बहुत सी बातें आती हैं, सभी बात एक जीव को लागू नहीं होती और एक बात सभी को लागू नहीं होती, ये वस्तु स्थिति है। जब ये वस्तु स्थिति है तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव तो समष्टिगत उपदेश देते थे, हमारी जिम्मेवारी क्या है इसमें? शास्त्र भी समष्टिगत उपदेश है, सारे समाज को ध्यान में रखकर के आचार्यों ने लिखा। हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेवारी वो है कि मेरे काम की चीज कहाँ है, वो मेरे ख्याल में नहीं आएगी, मेरे लक्ष्य पर नहीं आएगी, मेरा ध्यान नहीं जाएगा, मेरा सब निष्फल हो जाएगा। ज्ञान का परलक्ष्य नाम का एक दोष है, वो सबसे बड़ा दोष है और बहुभाग हमारे मुमुक्ष ये प्रयोजन की दृष्टि नहीं होने से परलक्षित स्वाध्याय करते हैं और उनके 50 साल का सत्संग स्वाध्याय ऊपर लक्ष्य खा जाता है। जैसे अज्ञान तपसी कितनी भी तपस्या करे, इसका तप को कौन खा जाता है? अज्ञान खा जाता है। इसका तप को कौन खा जाता है? अज्ञान खा जाता है। वैसे हम कितना भी स्वाध्याय सत्संग करें, सत्व ज्ञान का अभ्यास करें, अगर स्वलक्ष्य नहीं रहा और परलक्ष्य से वहां हुआ तो हमारा सब जानकारी वाला स्वाध्याय सत्संग ये परलक्ष्य खा जाता है, कोई सफलता नहीं मिल जाता। तो ऐसी ऐसी जो महत्वपूर्ण वाली बात है उस पर चर्चा होनी चाहिए और उस पर हमारा परिणामों में फिर बदली होना चाहिए। तो आज हम बैठे घंटा भर के लिए सत्संग के लिए बैठे हैं, हमने पूछा कि आप कुछ चर्चा करिए, चर्चा करेंगे आपके साथ, कौन सी बात पर चर्चा करना है, आपकी कौन सी बात पर चर्चा करेंगे? तो ये चर्चा में ये बात आई मानी चाहिए कि हमारा परलक्ष्य कहाँ हुआ, सारे दिनचर्या में या स्वाध्याय में हमारा परलक्ष्य का क्या हुआ। सबसे बड़ा ज्ञान का कोई अपराध है तो ये परलक्ष्य है। गुरुदेव फरमाते थे कि 11 और 9 पूर्व वाला परलक्ष्य ज्ञान, इससे कोई पारमार्थिक लाभ बिल्कुल नहीं है, ये शून्य है लाभ में। कितना लाभ हुआ? शून्य है। तो हमारा ध्यान उस पर क्यों नहीं जाता है? हम स्वाध्याय परलक्ष्य से करते हैं या स्वलक्ष्य से करते हैं? हम इतने कच्चे व्यापारी है क्या कि व्यापार भी करें और नुकसान को देखे नहीं? बात तो ये हो गई हमारी, इतने कच्चे हैं क्या कि व्यापार तो बड़े पैमाने में करें, छोटे मोटे छोटा व्यापार नहीं करते हैं, होलसेल, और नुकसान कितना होता है वो देखते नहीं है? क्या बात है हमारी, ये सब गड़बड़ी बहुत रही है। इस सब की छानबीन होनी चाहिए, रोजाना होनी चाहिए, रोजाना इसकी चर्चा होनी चाहिए। उसको चर्चा के एजेंडा पे लिए बिना, अनेक पहलू से उसकी चर्चा हुए बिना हम कहाँ कैसी गलती करते हैं हमको पता नहीं चलेगा। और मानेंगे कि हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, बड़े बड़े प्रभागम का स्वाध्याय करते हैं, लेकिन कौन चबा जाता है उसको भगवान जाने, हमको मालूम नहीं, ये बात हो जाती है। दूसरे को देखते हैं फलाना क्या करता है, फलानी क्या करती है, कौन कौन आगे बढ़ता है, कौन नहीं बढ़ता है, कौन क्या करता है, किसमें क्या दोष है, जो दूसरे के दोष देखने का बहुत पद्धति हो गई है परलक्ष्य में। परलक्ष्य में सबसे बड़ा अवगुण वो है तो दूसरे को दोष को देखेगा, उसमें तो वो है, उसमें तो वो है, उसमें तो वो है, गुण दृष्टि खत्म हो जाएगी। तो ये भी परलक्ष से होता है। तो सारी दुनिया की पंचायत टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, यहाँ से चालू होती है, होती है कि नहीं होती है। हमको कोई लेना देना नहीं है कि ईरान अमेरिका से लड़ता है तो इसमें हमारा क्या है, लेकिन हमको विचार चलता है कि अमेरिका वालों ने इस तरह से हमला करे तो उसको ठीक करेगा, हमको क्या लेना देना है। ये जीव का पर दूसरे की पंचायत करने की आदत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जिसकी कोई हद नहीं है।
तो
सहज हो गया तो संसार परिभ्रमण भी सहज हो गया है, ये भी सहज हो गया है कि नहीं हो गया है। यहाँ से जीव छूटता है, छूटना नहीं चाहता है, जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है, सहज जाना पड़ता है। ये बात होगी, तो बहुत कीमती चीज है, समाज पे काम करना है, हीरों के व्यापार से भी अधिक कीमती है। आज की सरकार में तक रखें
ध्रुवी।